नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। लोकसभा में आज पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया है कि भारत को निशाना बनाने वाले दुश्मनों और आतंकवादियों के लिए कोई सुरक्षित पनाहगाह नहीं है। उन्होंने तमिलनाडु में चोल सम्राटों राजराजा चोल और राजेंद्र चोल प्रथम की भव्य प्रतिमाएं बनाए जाने की घोषणा की। उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर भगदड़ की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया। अमेरिका में आयात किए जाने वाले यूरोपीय संघ के अधिकांश सामानों पर 15% शुल्क लगेगा। थाईलैंड और कंबोडिया सीमा विवाद सुलझाने पर आज मलेशिया में बैठक करेंगे और भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का चौथा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ। समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। लोकसभा में आज पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू होगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पहले बताया था कि पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की कार्रवाई पर विशेष चर्चा मॉनसून सत्र में होगी। उन्होंने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में ये निर्णय लिया गया था। श्री रिजिजू ने कहा कि चर्चा के लिए लोकसभा में 16 घंटे का समय निर्धारित किया गया है।
पहले हम ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा करेंगे, ये ऑपरेशन पार्टी का ही मांग था, सरकार ने एग्री पहले दिन से किया है। तो ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा पूरा करने के बाद अगले विषय क्या लेंगे उसका हम बाद में तय करेंगे। इसलिए मंडे से लोकसभा में 16 घंटे के लिए ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी और ट्यूसडे को राज्यसभा में फिर 16 घंटे के लिए ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे विश्व को दिखा दिया है कि देश की संप्रभुता पर हमला होने पर भारत किस तरह जवाब देगा। श्री मोदी ने कहा कि इस सैन्य अभियान ने पूरे देश में नया आत्मविश्वास भर दिया है। प्रधानमंत्री ने कल तमिलनाडु के गंगईकोंडा चोलापुरम में चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की जन्म शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही।
आज का भारत अपनी सुरक्षा को सर्वोपरि रखता है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने देखा है कि कोई अगर भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर हमला करता है तो भारत उसे कैसे जवाब देता है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया है कि भारत के दुश्मनों के लिए, आतंकवादियों के लिए अब कोई ठिकाना सुरक्षित नहीं है। ये पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर ने एक नई चेतना जगाई है, नया आत्मविश्वास पैदा किया है और दुनिया को भी भारत की शक्ति को स्वीकार करना पड़ रहा है।
श्री मोदी ने घोषणा की कि भारतीय इतिहास और संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान के लिए तमिलनाडु में राजराजा चोल और उनके पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी।
आने वाले समय में हम तमिलनाडु में राजराजा चोला और उनके पुत्र और महान शासक राजेंद्र चोला प्रथम की भव्य प्रतिमा स्थापित करेंगे। ये प्रतिमाएं हमारी ऐतिहासिक चेतना का आधुनिक स्तंभ हो बनेगी।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर भगदड़ की मजिस्ट्रेट जांच कराने का आदेश दिया है। हरिद्वार के अपर जिला मजिस्ट्रेट को घटना की जांच करने और 15 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने हरिद्वार में संवाददाताओं से कहा कि मनसा देवी मंदिर में भगदड़ अफवाह के कारण हुई।
इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं और ये अफवाह क्यों फैली, कैसे फैली, इसकी जांच की जा रही है। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घायलों को हर संभव मदद की जा रही है, उनके स्वास्थ्य को जल्दी से जल्दी ठीक हो के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
मनसा देवी मंदिर की सीढ़ियों पर कल भगदड़ मचने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 30 घायल हुए थे। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सर्वोच्च न्यायालय आज बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ मामले की सुनवाई करेगी। निर्वाचन आयोग का कहना है कि पुनरीक्षण का उद्देश्य अयोग्य मतदाताओं के नाम हटाकर पारदर्शी मतदाता सूची सुनिश्चित करना है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई तथा केंद्रीय अल्पसंख्यक और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र के रूप में उभरने के लिए कश्मीर विश्वविद्यालय की सराहना की है। कश्मीर विश्वविद्यालय के पहले पूर्व छात्र सम्मेलन को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति गवई ने अकादमिक और अनुसंधान उत्कृष्टता के लिए विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि विश्वविद्यालय देश का भविष्य संवारने में अपनी भूमिका निभाता रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने व्यापक व्यापार समझौते को अंतिम रूप दे दिया है। अमेरिका में आयात किए जाने वाले यूरोपीय संघ के अधिकांश सामानों पर 15% का शुल्क लगेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय संघ प्रमुख उर्सुला फॉन डेर लियन ने कल रात व्यापार समझौते की घोषणा की। अमरीका के साथ समझौते के लिए 1 अगस्त की समय सीमा तय की गई थी। ऐसा नहीं होने पर 30% शुल्क लगाने की चेतावनी दी गई थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने संवाददाताओं को बताया कि जापान से आयात पर भी 15% शुल्क तय किया गया था। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद पर आज मलेशिया में बैठक होगी। थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री फुमथम विचायाचाई थाईलैंड के शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे। कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मैनेट के भी बातचीत में शामिल होने की आशा है। एक रिपोर्ट।
थाईलैंड और कंबोडिया सीमा संघर्ष में मरने वालों की संख्या 32 हो गई है और 130 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कल चौथे दिन भी यह संघर्ष जारी रहा। थाईलैंड ने सीमावर्ती क्षेत्रों में मार्शल लॉ लगा दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात स्कॉटलैंड में संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने दोनों देशों को संघर्ष जारी रहने पर व्यापार समझौतों पर रोक लगा देने की चेतावनी दी है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि मलेशिया में आज होने वाली वार्ता तनाव कम करने में महत्वपूर्ण साबित होगी। समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं हिमांशु कांडपाल।
भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला का 4वां मैच ड्रॉ हो गया है। कल रात ओल्ड ट्रैफर्ड में मैच के 5वें और अंतिम दिन भारत ने दूसरी पारी में 2 विकेट पर 174 रन से आगे खेलना शुरू किया और 4 विकेट पर 425 रन बनाए। कप्तान शुभमन गिल ने 103 और लोकेश राहुल ने 90 रन की पारी खेली। रविन्द्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने 5वें विकेट के लिए 203 रन की लंबी साझेदारी कर मैच ड्रॉ कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जडेजा ने नाबाद 107 और सुंदर ने नाबाद 101 रन बनाए। पहली पारी में भारत ने 358 रन बनाए थे जबकि इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 669 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया था। इंग्लैंड श्रृंखला में 2-1 से आगे है। 5वां और अंतिम टेस्ट मैच बृहस्पतिवार से ओवल में खेला जाएगा। उधर जॉर्जिया के वाटूमी में महिला शतरंज विश्व कप के फाइनल में आज भारत की ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी और अंतर्राष्ट्रीय मास्टर दिव्या देशमुख टाई ब्रेकर में उतरेंगी। फाइनल में दोनों के बीच पहले 2 गेम ड्रॉ रहे थे जिसके कारण विजेता का निर्णय टाई ब्रेकर के जरिए किया जा रहा है। टाई ब्रेकर भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 से शुरू होगा। टाई ब्रेकर में 10-10 मिनट के 2 रैपिड मैच होंगे। रैपिड में भी अंक बराबर रहते हैं तो 5 मिनट के 2 मैच और खेले जाएंगे। इसके बाद भी अगर मुकाबला ड्रॉ रहता है तो 3-3 मिनट के 2 ब्लिट्ज मैच होंगे। और महिला यूरो फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में इंग्लैंड ने स्पेन को पेनल्टी शूटआउट में 3-1 से हरा दिया है। इंग्लैंड ने दूसरी बार यह खिताब हासिल किया है। कल रात स्विट्जरलैंड के बासेल में खेले गए फाइनल में क्लो केली ने विजेता टीम के लिए निर्णायक गोल दागा।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इंग्लैंड के साथ बृहस्पतिवार से ओवल में शुरू होने वाले 5वें और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की जगह नारायण जगदीशन को टीम में शामिल किया है। मैनचेस्टर में इंग्लैंड के साथ 4थे क्रिकेट टेस्ट मैच में पंत के दाहिने पैर में फ्रैक्चर हो गया था। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में आज तड़के एक टिन शेड पर बिजली का तार गिर जाने से भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। इसमें 19 लोग घायल हो गए। ये घटना प्राचीन औसनेश्वर महादेव मंदिर के बाहर हुई, जहां श्रद्धालु सावन के तीसरे सोमवार को दर्शनों के लिए पंक्ति में खड़े थे। दो श्रद्धालुओं की हालत गंभीर है। कोविड महामारी के दौरान वैक्सीन से 25 लाख से अधिक लोगों की जान बचाई जा सकी। इटली के एक विश्वविद्यालय के अध्ययन से ये बात सामने आई है कि कोविड के प्रति 5400 टीके से कम एक व्यक्ति की जान बचाई गई। कोविड संक्रमण से पहले टीका लगवाने वाले लगभग 82% लोगों की जान बचाई जा सकी। इनमें 90% से अधिक लोग 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के थे। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान में आज अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। देश के मध्य क्षेत्र तथा पश्चिमी तट और आसपास के घाट क्षेत्रों में आज मानसून सक्रिय रहेगा। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के कुछ स्थानों में आज बहुत तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, केरल, गोवा, सौराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और पश्चिमी राजस्थान में भी तेज वर्षा का अनुमान है। गुजरात में तेज वर्षा से खेड़ा और अहमदाबाद के कई जिलों में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कल रात गांधीनगर में राज्य आपात नियंत्रण केंद्र में बैठक की और स्थिति का जायजा लिया। मौसम विभाग ने आज राज्य में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बनासकांठा, साबरकांठा और अरावली सहित उत्तरी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 20 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।
भारी बारिश के कारण खेड़ा, सुरेंद्रनगर, पाटन, अरवली, अहमदाबाद, मेहसाणा, बनासकांठा और साबरकांठा सहित कई जिलों में जलभराव और स्थानीय बाढ़ जैसी स्थिति देखी गई है। खेड़ा जिले की सभी प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलें आज बंद रहेंगी। एनडीआरएफ की 12 और एसडीआरएफ की 20 टीमें तैनात की गई है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा रहा है। इस बीच खराब मौसम के कारण मछुआरों को अगले 5 दिनों के लिए समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। अपर्णा कुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में हेपेटाइटिस से बचाव और उपचार विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। यकृत और पित्त विज्ञान संस्थान के यकृत रोग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर विशाल अरोड़ा परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता, कार्यक्रम के दौरान हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ से लिवर से संबंधित रोगों की शीघ्र पहचान, रोकथाम और उपचार के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
धन्यवाद विशाल। भारत के दुश्मनों और आतंकियों के लिए दुनिया में कोई जगह सेफ नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान हरिभूमि सहित कई अखबार में है। तमिलनाडु के अरियालूर में एक कार्यक्रम में पीएम ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे देश में एक नया आत्मविश्वास पैदा किया। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर आज होने वाली चर्चा को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में आमना सामना आज। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर मार्ग पर भगदड़ सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला लिखता है, करंट फैलने की अफवाह से मची अफरा तफरी, श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ बनी हादसे की वजह। लद्दाख में चीन से सटी वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास बसाए जाएंगे तिब्बती। दैनिक जागरण के अनुसार तिब्बतियों के पुनर्वास के लिए लेह के थिक्से मठ ने सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन को लगभग 8 एकड़ जमीन दी। सेवा में बने रहेंगे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जख्मी जवान, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन के हवाले से नवभारत टाइम्स ने लिखा है। किसी अभियान के दौरान स्थायी दिव्यांगता का शिकार होने पर भी मिलेगा एक मुश्त मूल पैकेज, उचित प्रमोशन और वेतन। IIT की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए खुशखबरी राजस्थान पत्रिका में है, 5 नई IIT में 4 साल में बढ़ाई जाएंगी 6,576 सीट।
धन्यवाद आकर्षिता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में आज पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया है कि भारत को निशाना बनाने वाले दुश्मनों और आतंकवादियों के लिए कोई सुरक्षित पनाहगाह नहीं है। उन्होंने तमिलनाडु में चोल सम्राटों राजराजा चोल और राजेंद्र चोल प्रथम की भव्य प्रतिमाएं बनाए जाने की घोषणा की। उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर भगदड़ की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया। अमेरिका से आयात किए जाने वाले यूरोपीय संघ के अधिकांश सामानों पर 15% शुल्क लगेगा और थाईलैंड और कंबोडिया सीमा विवाद सुलझाने पर आज मलेशिया में बैठक करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।